ओम शांति।
आज
हमको यहाँ पे अपना अनुभव सुनाने के लिए बुलाया है। शरीर का नाम हीना है। प्रोफेशन से हम डॉक्टर हैं। 5 साल से ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और करीबन 6.5 साल से ज्ञान में है। हमारा जन्म मुंबई में हुआ है और हम मुस्लिम धर्म से हैं। तो ज्ञान में कैसे आए ऐसे सुनाने के लिए कहा था। हम ग्लोबल हॉस्पिटल से पहले बॉम्बे के जो BSCS हॉस्पिटल है वहाँ पर सेवा करते थे। 2008 में हमने BSCS ज्वाइन किया था और उससे पहले हमने पहले होम्योपैथी किया था। उसके बाद हमने क्रिटिकल केयर में अपनी डिग्री ली और अभी हम इमरजेंसी मेडिसिन ही प्रैक्टिस करते हैं। तो 2008 में हमने BSCS ज्वाइन किया था। तो वहाँ पर एक रूल था कि जो भी हॉस्पिटल ज्वाइन करेगा उसका 7 दिन का कोर्स कराया जाता है वहाँ पे। तो हमारा भी कोर्स चालू हुआ वहाँ पे और लेकिन कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ कोर्स। कोर्स पूरा ही नहीं हुआ कभी। तो जब कोर्स चालू किया तो वहाँ के अंशुला बहन जी जो है पार्ला सेंटर के, उन्होंने कोर्स चालू किया। क्योंकि हम अलग धर्म से आ रहे थे इसलिए हमारे सामने कोई चित्र नहीं रखे जाते थे। कोई भी चित्र के बिना ही वो हमसे बात करते थे, कुछ कहानियाँ सुनाते थे। तो हमको अच्छा लगता था। ऐसे उनके साथ हम 1-2 महीने में सिर्फ 3 बार बैठे। फिर उसके बाद उनको कोई विदेश सेवा के लिए जाना पड़ा तो दूसरी बहन जी आई उनकी जगह पे हमको सिखाने के लिए। तो वो तो पूरा चार्ट्स लेके खड़े हो गए, आत्मा परमात्मा। फिर हमको लगा ये तो सब हिंदू लोग ही हैं ये तो। इसके पहले हमारा ब्रह्मा कुमारी से कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं था। तो फिर वो सब सिखाने लगे लेकिन हमको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता था उसमें। वो स्केलेटन का चित्र और वो ड्राइवर है ये सब तो समझ में नहीं आता था हमको ये सब। और कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें तो इतनी रुचि ही नहीं ली। फिर दिन निकलते गए। फिर उसके बाद 2008 अक्टूबर 10 तारीख को हमारे पिताजी बीमार पड़ गए। तो कुछ ऐसा हुआ कि उनके पैर में क्लॉट हो गया था और उनको पैर पे स्वेलिंग था। तो हमने उनसे कहा कि इसका डॉपलर करा लेते हैं। तो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर ऐसी बात थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मस्कुलर पेन है, दूसरे डॉक्टर ने ऐसा बोला। तो हमने फिर भी उनका अपॉइंटमेंट लिया था BSCS में। और हम BSCS में पहले वार्ड में काम करते थे तो उस दिन हमको चांस मिला था कि हम जहाँ पे हार्ट के ऑपरेशन होते हैं वो 7th फ्लोर पे जाए। तो हम 7th फ्लोर पे गए थे और हम OT के अंदर थे, ऑपरेशन थिएटर के। जब हम बाहर निकले तो हमने देखा हमारे मोबाइल पे 13 मिस कॉल थे। तो घर से फ़ोन आया था कि पापा, हमारे पापा हाई कोर्ट में थे, बॉम्बे हाई कोर्ट में एडिशनल पर्सनलिटी थे। तो वो गिर गए, ब्लड प्रेशर लो हो गया था उनका और उनको बहुत चेस्ट पेन हो रहा था। तो उनके जो फ्रेंड्स थे वो उनको बाजू के हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ पर उनका डायग्नोसिस ही नहीं हुआ कि उनको क्या हो रहा था। तो फिर हमारी डॉक्टर से बात हुई लेकिन बहुत टाइम हो गया था। तो हमने कहा कि वो क्लॉट जो है वो लंग्स में चला गया है इसलिए पेन हो रहा है उनको। उनको कोई हार्ट अटैक नहीं है, वो क्लॉट जो है वो लंग्स में चला गया है। तो फिर हम वहाँ से पहुँचे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल। फिर हमने हमारे पिताजी को शिफ्ट किया सैफी हॉस्पिटल में और हम बस उनसे बात कर रहे थे और हम बाहर निकल गए। इतने में उनका हार्ट बंद हो गया। तो हार्ट जब बंद हो गया तो जैसे वो मसाज करते ना कार्डियक मसाज, वो करने लगे उनको। लेकिन उसमें बहुत टाइम चला गया। जैसे कहते हैं अगर 3 मिनट हमारे ब्रेन को खून नहीं पहुंचता है तो ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो ऐसे ही उनके साथ कुछ हुआ कि ब्रेन डैमेज हो गया और वो कोमा में चले गए। अब हमारे लिए ये बहुत शॉकिंग था क्योंकि हमारे पिताजी हमारे लिए सब कुछ थे। तो हमारी फैमिली के लिए भी बहुत बड़ा शौक था कि ये कैसे हो गया। और 15 दिन तक तो उन्होंने आँख ही नहीं खोली। तो फिर हमने सोचा अब क्या। वहाँ के डॉक्टर हमको बोलने लगे कि नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी ये ऐसे ही रहेंगे, यानी कि हिलेंगे नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही रहेंगे। 15 दिन के बाद उन्होंने आँखें भी खोली तो सिर्फ आँखें खोली, बाकी उनका कोई हमारे से कॉन्टैक्ट नहीं कुछ नहीं, क्योंकि ब्रेन डैमेज हो चुका था। और फिर उसके बाद हमने सोचा कि नहीं बड़े डॉक्टर्स को बुलाते हैं। तो जो बड़े डॉक्टर थे BSCS के, जिन्होंने बड़ी दादी जी को देखा था, उन डॉक्टर को हमने बुलाया वहाँ पर। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो फिर हमने सोचा कि अभी क्या करें, लेकिन हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया, स्वीकार ही नहीं किया कि ऐसा कुछ हो सकता है हमारे पापा के साथ। फिर हम 15 दिन के बाद उनको BSCS लेके गए, और BSCS में हमने उनको ICU में भर्ती किया, और वहाँ पर फिर उनकी ट्रीटमेंट होने लगी। लेकिन वो कोमा में ही थे। हमारी जो फैमिली थी वो सब 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 प्रकार की चीज़ें करने लगी, जैसे सब बाबाओं के पास जाने लगे कि कुछ हो जाए। हमारा इन सब चीज़ों में कोई फेथ पहले से था ही नहीं, हमने कभी इतना दरगाह पे ऐसे सब कुछ नहीं किया। नमाज पढ़ते थे, रोज़ा भी हम नहीं रखते थे इतना। और लेकिन हमारे पिताजी हमको हमेशा सिखाते थे कि सब रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट रखना, लेकिन फॉलो सिर्फ इस्लाम को ही करना। तो हम जैसे कि गणपति पूजा में भी जाते थे उनके फ्रेंड्स के घर पे, हम दिवाली में भी जाते थे उनके घर पे, और वो ईद में हमारे घर पे आते थे। तो हमारा ये बैकग्राउंड था कि हम इतना कोई घृणा नफरत नहीं थी हमको दूसरे धर्मों से, और इतने कट्टर भी नहीं थे कि उनका कुछ खाएंगे नहीं। नहीं तो बहुत सारे मुस्लिम ऐसे होते जो प्रसाद भी नहीं खाते, लेकिन हम ये सब खाते थे, क्योंकि हमको शिक्षा ही ऐसी मिली थी घर में कि सबको रिस्पेक्ट करना है। तो फिर जब हम उनको BSCS लेके आए, तो फिर दिन ऐसे ही निकल रहे थे, और सब वो जादू और ये वो कर रहे थे, बाबाओं को बुला रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, और हमारा फेथ जो था ना वो हटते जा रहा था। तो एक दिन हमने, हमारे जो डॉक्टर थे वो टीचर भी थे हमारे, उनसे कहा कि अगर मेरे पापा उठे नहीं ना तो मेरा फेथ चला जाएगा खुदा पे से, कि मैं भूल जाऊंगी कि खुदा कोई है इस दुनिया में। ऐसे भी बोल दिया था मैंने। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। फिर वहाँ पर उनको स्टिमुलेशन थेरेपी देने के लिए कहा कि उनको कोई ऐसी आवाज़ सुनाई जाए कान में, कोई गीत सुनाओ। तो क्योंकि हम BSCS में थे, तो हमको मेडिटेशन म्यूजिक की CD मिली, किसी ने हमको मेडिटेशन म्यूजिक की CD दी, और फिर वो म्यूजिक की CD सुनाते थे हम उनको। तो हम देखते थे उनके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। तो फिर हमारा इंटरेस्ट आया कि ये क्या है, कि क्यों ऐसा हुआ ये। और फिर उसके बाद हम पढ़ने लगे उसके बारे में, लेकिन इतना कुछ फिर भी नहीं हुआ कि जाके कोर्स करे और पता करे, बस उतना ही था। बट उन्होंने कहा कि आप इनको वाइब्रेशन दो, आप ये सब करते हो ना इतना, बाबाओं को बुला रहे हो, तावीज़ पहना रहे हो, तो ये भी करो। तो हम सोचे ठीक है वाइब्रेशन, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत तो सीखा था ना वो मेडिटेशन, तो हम वो करने लगे। उसके बाद यहाँ पर जून में, हाँ जून या मई के आसपास, गुलजार दादी एडमिट हुए थे वहाँ पर, और दादी का पाइल्स का ऑपरेशन हुआ था, और दादी उस फ्लोर पर आए थे जिस फ्लोर पर हम काम करते थे। तो दादी को बहुत ब्लीडिंग होने लगा, तो हम जाके देखे, क्योंकि हमको कहा गया था कि ये ब्रह्मा कुमारी इसके VIP है। तो हम दादी को देखने गए, लेकिन दादी के चेहरे पर चिंता का कुछ भी इम्प्रेशन नहीं था। दादी मुझे ही फिकर है कि मैं बोल रही कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करना। तो दादी कह रहे फिक्र करने की क्या बात है, इसमें जो होगा वो डॉक्टर देख लेंगे। और बाकी जो ब्राह्मणिया थी वो सब टेंशन में वो, और मैं देख रही हूँ दादी तो हलचल में ही नहीं, और दादी की जो आंखें थी ना वो चमक रही थी। जब भी मैं उनकी आंख में देख रही थी वो चमक रही थी, और मुझे लगा ये क्या है। फिर मैं बाहर जाके नर्सेस को बताती भी थी कि आपने देखा वो दादी की आंखें चमक रही है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर यहाँ को क्या हो गया, ये ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन बाद में मैंने पढ़ा था कि दादी को वरदान था कि ये आंखें सेवा करेगी, और सचमुच वो चमक रही थी, ऐसा लग रहा था दो डायमंड चमक रहे आंख में। वो हो गया एक इंसिडेंट, देखा कि ये VIP ऐसे थे इनके। फिर उसके बाद हमको माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में आने का चांस मिला यहाँ पर। तो फिर हम माइंड बॉडी मेडिसिन में कुछ डॉक्टर्स के साथ यहाँ पे मधुबन आए। तो मधुबन में हम जब आए तो हम 750 डॉक्टर्स थे कुछ, जो ऑल ओवर इंडिया से आए थे। तो हम देख रहे थे कि अगर घर में कोई फंक्शन होता है तो 20-25 लोग आते, तो कितनी आवाज़ होती है घर में, और यहाँ तो 750 लोग हैं और फिर भी आवाज़ नहीं है इधर तो। और सब मुस्कुराते ही है यहाँ पर, तो ज्ञान सरोवर में सब मुस्कुरा के ही सेवा कर रहे हैं। वरना कितनी हलचल होती है, कितनी टेंशन होती है कि सबको खाना परोसना है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा था। ये देख के हमको बहुत अच्छा लगा। फिर हमारा कॉन्फ्रेंस चालू हुआ तो वहाँ डॉक्टर अशोक मेहता ने हमको देखा तो वो भी चौंक गए कि ये कैसे यहाँ पे आ गए। तो वो हमेशा हमको BSES में देखते थे, हम हमेशा वेल ड्रेस्ड होते थे। 8,000 का तो हमारा स्टेटो होता था खाली, इतना मतलब टॉप टू बॉटम टिप टॉप चलते थे। तो सर हमको दूर से ही देखते थे लेकिन कभी बात नहीं करते थे हमसे इतना, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है सर। फिर वहाँ पे कॉन्फ्रेंस चालू हुई, फिर वो डॉक्टर मोहित गुप्ता का एक क्लास था, उस क्लास में मुझे इतना रोना आया, मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन मुझे फीलिंग्स हुई। और वो क्लास सर ने इतने जोश में कराया कि मेरे आंखों से बहुत आंसू हुए। फिर वो एक इंसिडेंट हुआ, फिर हम पांडव भवन आए। तो पांडव भवन में किसी ने कहा कि कुटिया में है ना बैठ के कुछ भी चिट्ठी लिखते तो वो हो जाता है, और जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो फिर हम गए कुटिया में और हमने वही चालू किया कि मेरे पापा के साथ ऐसे क्यों हुआ, मुझे इसका जवाब चाहिए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही चालू था हमारा, तो हमने वो लिख दिया। फिर हम वापस आए, फिर वापस आ गए, फिर सब बोल रहे अच्छा ब्रह्मा कुमारीज में जाके आ गए, अब तो शायद चेंज हो जाएंगे। ऐसे वहाँ के लोग टॉन्ट करते थोड़ा आपको, जो नॉन बीकेज रहते हैं वहाँ पे BSES में। तो कुछ नहीं हुआ, फिर ऐसे ही हम पढ़ने लगे, क्योंकि कार्मिक फिलॉसफी ये हमारे लिए कैचिंग पॉइंट था ज्ञान का। आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र ये सब कुछ नहीं हमको कैच किया, लेकिन जो कार्मिक फिलॉसफी थी ना वो हमने पकड़ ली। तो हमको समझ में आया, क्योंकि मुस्लिम्स में पास्ट लाइफ में बिलीव ही नहीं करते, कोई पास्ट लाइफ है ही नहीं हमारी, एक ही जन्म है, इसी में विश्वास रखते कि पास्ट लाइफ तो है नहीं। तो हमारा विश्वास ही नहीं था ना, तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्यों हुआ हमारे पिताजी के साथ ऐसा। तो फिर हमको समझ में आया कि अच्छा ये कर्मों की गति है, क्योंकि वो आत्मा इतनी अच्छी थी, सबके साथ इतना अच्छा करती थी, सबको बहुत हेल्प करते थे, अपने माता पिता के प्रति भी इतना उनका प्यार स्नेह था, फिर उनके साथ ऐसे क्यों हुआ। लेकिन फिर समझ में आया कि कर्मों की गति ऐसी है कि ये इस जन्म का नहीं है परंतु कोई और जन्म का है, जो अब इनके इनको ये भुगतना पड़ रहा है। ये हमको समझ में आया। फिर हमने जून में सबसे पहले जो फंक्शन अटेंड किया था वो मम्मा डे था, उसमें दादी जानकी आए थे भाईदास हॉल में, मुरली सुनाई थी, सब सफ़ेद कपड़े में थे। हमको भी किसी ने कहा कि सफ़ेद कपड़े पहन के जाने हैं, तो हम गए थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया था तभी भी। लेकिन ये कार्मिक फिलॉसफी समझ में आ गई इनकी, ये ऐसे कुछ होता है। फिर एक दिन दादी जानकी एडमिट थे BSES में, तो अंशुला बहन जी हमको लेके गए उनके पास और कहा कि ये हमारी डॉक्टर है, इनका ये कॉन्फ्रेंस से जाके आई है, इनका कोर्स अभी तक हुआ नहीं है पूरा, थोड़ा थोड़ा ही हुआ है, और इनके पिताजी को ऐसे ऐसे। तो दादी ने सब सुना। फिर दादी ने मुझे कहा कि तुम रात में आना, हाँ मैं तुमको दूधी का जूस दूंगी, ये पिलाना जाके अपने पिताजी को, और तुम मुझे अपने घर पे लेके जाओ, मैं ऐसे हाथ फिराऊंगी तुम्हारे पिताजी के सिर पर तो वो चल के उठने लगेंगे। तो मुझे लगा ये दादी देखो कैसे, मतलब ये बाबाओं की तरह ही बात कर रही है, तो वैसे ही कुछ हो रहा है। फिर दादी ने एक वाक्य बोला कि तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ मुरली रोज सुननी है, कोर्स वोर्स कुछ नहीं, तुम मुरली रोज सुनना। तो फिर मुझे लगा अच्छा, ऐसे कॉन्फ्रेंस से आए थे तो तब तक किसी ने नहीं बोला था कि मुरली रोज सुनना है। और कॉन्फ्रेंस से जब हम आए थे ना तो वहाँ पर लास्ट डे पर डॉक्टर अशोक मेहता ने पैनल डिस्कशन में कहा कि आदिदेव बुक लेके जानी है, आदिदेव की बुक, तो वो तो इंग्लिश में थी तो वो हमको समझ में आती, तो वो बुक हम लेके आए थे साथ में, और वो बुक हमने पढ़ना चालू की। हमको बहुत कुछ समझ में आने लगा और बहुत नशा चढ़ने लगा कि हाँ ऐसे सब कुछ है। फिर हम मुरली कहाँ से मिले ना हमको, तो हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स थे उनके साथ हम मुरली पढ़ते थे, लेकिन वो डॉक्टर्स रोज हमको नहीं मिलते थे क्योंकि हमारे ड्यूटी साथ में नहीं होते थे। तो हमने सोचा क्या करना है, तो नीचे ही हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम है तो उधर मुरली क्लास होती थी 7 बजे से 8 बजे तक। तो फिर हम मुरली क्लास में जाना चालू किया हमने, कोर्स कुछ नहीं, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस जाना है अभी मुरली के लिए, क्योंकि दादी ने कहा कि मुरली रोज सुनना, दादी ऐसे बोलते जा रहे थे और मैं रोती जा रही थी कि मुरली रोज सुनना और कुछ नहीं करना, रोज जाके बस सुनना। तो फिर मैं गई और देखा, मैं तो जाके भाइयों की साइड पे बैठी पहले, फिर भाइयों ने इशारा करके मुझे कहा उधर उधर, और फिर मैं जाने लगी। बहनें मुझे देख रही थी, बहनें मुझे जानती थी लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बोलती थी, वो ना ही कुछ गाइड करती थी, कुछ नहीं, बस देख रहे थे वो लोग मुझे कि ये क्या है। और फिर मैं रोज जा रही थी 7 बजे, फिर मैंने देखा सब सफेद कपड़े पहनते इधर, तो मैंने भी सफेद कपड़े पहनने चालू किए, सब मुझे देख देख के ही सीखना पड़ा। फिर मैंने देखा डायरी लाते ये लोग सब रोज, और प्रश्न उत्तर लिखते, फिर बंद करते, फिर खोलते, फिर वरदान लिखते, तो मैंने सोचा मुझे भी डायरी लेके जानी है, फिर मैं भी डायरी लेके जाना चालू किया। फिर अब मुरली तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थी, क्योंकि उसमें सब बाबा जो एग्जाम्पल्स देते वो रामायण महाभारत वही एग्जाम्पल्स, और ये तो हमारे घर में अलाउड ही नहीं था, हमने सीरियल भी नहीं देखे थे रामायण महाभारत के, क्योंकि हमारे घर में वो अगर बज भी जाए ना तो फिर वो बंद कर दिया जाता था। हम कार्टून देख सकते थे, बाकी सब दूसरी चीज़ें देख सकते थे, लेकिन रामायण महाभारत ये सब नहीं अलाउड था। और मुरली में बाबा वही सब एग्जाम्पल्स बोल रहे थे, शास्त्र के एग्जाम्पल्स और ये वो, और इतने सारे वर्ड्स थे ना, तो शुद्ध हिंदी तो हमको पता ही नहीं थी, जैसे वृत्ति कृति स्मृति ये सब मेरे लिए बहुत नए वर्ड्स थे। तो फिर मैंने सोचा अब क्या करना है, और वहाँ पर जो श्रीनिवास भाई थे वो 6 महीना देखते पहले, अगर 6 महीना आप आएंगे ना तो ही आपको वो मुरली देंगे, उसके पहले वो नहीं देंगे मुरली, वो पहले देखेंगे कि कौन आ रहा है फिर देंगे। लेकिन मुझे तो मुरली चाहिए ही थी अभी, तो फिर हमने उनको कहा कि मुरली चाहिए, तो उन्होंने पहले तो देखा देखा, फिर 15 दिन के अंदर ही झगड़ा वगड़ा करके थोड़ा मुरली उनसे ले ली हमने। और फिर अभी मुरली ले तो ली, पढ़ना तो है लेकिन उसको समझना कैसे है ना, मुझे इतना भी नहीं था कि बहनों के पास जाके समझ ले। तो फिर मैं जाके डिक्शनरी खरीदा मैंने, हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी, कि अभी ऐसे करना है, हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी लेके उसको चेंज करके फिर समझना है, फिर एक एक वर्ड निकाल के। और ये सारे काम मुझे हॉस्पिटल के ड्यूटी के बाद करने पड़ते थे, क्योंकि मैं घर मुरली नहीं लेके जा सकती थी, आज तक भी मैं उनके सामने मुरली लेके नहीं बैठ सकती, मुझे छुपाना ही पड़ता है वो। तो फिर मैंने चालू किया वो पढ़ना, फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये ऐसे ऐसे ऐसे। उसके बाद एक हफ्ते का शिवानी बहन का क्लास चालू हुआ मुंबई में, उनका पूरा एक था, तो मेरे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गए कि हाँ ये जो शिव है ये कोई हिंदू वाला शिव नहीं है, और ये क्या है, शिव कौन है, ये ब्रह्मा कुमारीज कौन है, बहुत कुछ उसमें समझ में आया, कर्मिक फिलोसफी के बारे में तो और डिटेल में समझ में आया, क्योंकि हमारी छोटी बहन भी जो थी ना लौकिक बहन, वो भी बचपन से बीमार है, वो जब पैदा हुई तो उसका सर बड़ा, उसके अभी तक 7-8 ऑपरेशन हो चुके, तो हमको हमेशा उसको देख के ऐसा लगता था कि इसके साथ ही ऐसा क्यों, दूसरे बच्चे भी पैदा होते हैं लेकिन वो नॉर्मल है, मेरी बहन ही ऐसे क्यों पैदा हो गई और उसके साथ ऐसे क्यों हो रहा है, तो ये सब विचार थे। लेकिन वो सब चीज़ क्लियर होती गई जब हम क्लासेस सुनने लगे। अब अक्टूबर का सीज़न था, तो हमने बाबा को पहले तो LCD पे देखा सेंटर पे, तो जब हम सेंटर पे बाबा को देखा तो मुझे लगा अरे ये भगवान है, मतलब भगवान ऐसे बात करता है, ऐसे खाता है, ऐसे बोलता है, ऐसे स्माइल करता है, ये सब देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और उस मुरली में बाबा खांसते हैं, तो मुझे लगा भगवान को खांसी भी आती है और रहना ये सब, मुझे एंड का जो पार्ट देखने बहुत अच्छा लगता था, जब वो चलता है ना, जब बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, अब बाबा दादियों से मिलते, ये देखने के लिए मैं रुकती थी, क्योंकि उसमें ही भगवान के ज़्यादा मूवमेंट्स है, बाकी बाबा हिलता ही नहीं है ना, बाबा से वैसे बैठ के मुरली चलाते और है ना, बाकी जो करता है वो सब बाद में ही करता है वो, तो वो देखने मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। फिर अभी मुझे भी तो मिलने आना है मधुबन अभी एज अ वीके, तो फिर अब मेरी मम्मी को तो पता चल गया ना कि ये तो कुछ नहीं, ये तो कुछ चेंज हो रहा है, 7 बजे रोज जा रहे और शाम को आ रहे एकदम आराम से, और खाने पीना भी छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ दिया, रमज़ान था तभी, और रमज़ान में तो शाम को इतनी सारी चीज़ें बनती है इफ्तारी में, और हाँ हम कुछ नहीं लेते थे, तो मम्मी बहन बोलती थी बड़ी बहन कि मम्मी ने बनाया ये, मैंने बोला हाँ चलेगा हम फल खाएंगे। और फिर भोजन पे तो बहुत परीक्षाएं हमेशा से आई, तो फिर मैं तो नहीं खाना छोड़ दिया मैंने, ये भी मुझे कोई बहन ने नहीं बताया था, ये भी क्लासेस में सुन सुन के बाबा की मुरली में सुन सुन के छोड़ा। और फिर उसके बाद है ना, मम्मी तो सब कुछ बना रही घर में, और हम कभी कभार रात में घर पे आते थे 10:30 बजे, फिर स्नान वान करके देखते थे, तो सब नॉन वेज तो रहता था, और अगर सब्जी भी रहती थी तो उसमें है ना प्याज रहती थी, प्याज लहसुन, तो अब क्या करेंगे, तो वाइट राइस लेके खाते थे। और खाना बनाने भी नहीं आता था, इतना बड़े हो गए तो भी, ये सब कुछ बाबा ने ही सिखाया। ना ही खाना बनाने आता था, ना ही कपड़े धोने आते थे, कुछ नहीं आता था, तो फिर खुद से खाना बनाना भी चालू किया था। फिर हमको आना था, तो जनवरी में हमने टिकट बुक कर दी। हम 18 जनवरी 2010 में बाबा को पहले मिले, तो हमने सोचा अभी आना है, लेकिन हमारे घर से फिर विरोध चालू हुआ। अब उनको पता चल गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है, और ना तुम एक बार गई तो ऐसा हो गया, अब दूसरी बार जाओगी तो तुम तो साड़ी पहन के आओगी पूरा। तो फिर अभी क्या करें, फिर बाबा को योग लगाया, बाबा से कहा कि अब क्या करना है। फिर कैसे वैसे भी 18 जनवरी आई, और उसके पहले ही उन लोग, मेरे भाई और मेरा बहन ही मेरी कपड़े कपड़े पैक कर रहे थे। ऐसे हो गया, चेंज हो गया एकदम से, बाबा ने कुछ वंडर कर दिया तभी। और फिर 18 जनवरी को हम आए। 18 जनवरी को जब आते तो कहते ना मौन में रहना है, तो हमको सिखाया गया था मौन में रहना है। तो हमारे साथ जो कुमारिया थी ना, वो तो बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला देखो इसका तो मौन अभी से ही है। ऐसे करते हुए हम पूरे मर्यादाओं में मधुबन पहुँचे, और फिर 17 को हम ऊपर आए थे, तो हमको जगह जगह पे बैठ रहे, लेकिन सब ग्रुप के साथ उठना है करना है, तो हमको योग लगाने को ही नहीं दे रहा कोई, और बैठ रहे उठ रहे बैठ रहे उठ रहे, ऐसे हो गया। और फिर नीचे क्लासेस चले, 18 जनवरी के दिन फिर बाबा को मिलना था, अब बैठना कहाँ है इतनी बड़ी सभा। लेकिन मेडिकल विंग से थे, तो यहाँ पर हम जीतू भाई से मिले, और उनसे कहा कि हमको आगे बैठना है, तो फिर उन्होंने भी हमको आगे बिठा दिया, सबको पीछे करके हमको जगह दे दी आगे बैठने की। और फिर हम बैठे रहे और मुरली चालू हुई, और फिर हम एक ही बात सोच रहे थे कि बाबा पहली बारी वाले आने को जो आता है उनको उठाते हैं ना बाबा, और कुछ ना कुछ वरदान देते, तो आज बाबा क्या बोलेगा, आज तो बाबा को कुछ अच्छा और स्पेशली बोलना है। तो अचानक से उस मुरली में ऐसा वाक्य है जहाँ पे बाबा मुरली चला रहे, और मुरली चलाते चलाते बाबा बोलते हैं कि पहली बारी वाले आए उठो, तो मैं इतनी खुश हो गई कि कैसे संकल्प पहुंच गया। और फिर बाबा ने वरदान दिया कि लास्ट तो फास्ट तो फर्स्ट जाना है, तो मुझे इतना खुशी हुआ, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है हमेशा और अभी तक, कि भगवान का जब जाने का टाइम है तब उसने मुझे बुलाया अपने यज्ञ में, कि एकदम एंड में आए हैं हम, जब सब कुछ खत्म होने पर है तब पहुंचे हैं इधर। तो लेकिन ये जब वरदान मिला तो बहुत खुशी हुई। और फिर हम मेडिकल विंग की कॉन्फ्रेंस में जब दादी से भी मिले, तो ब्लेसिंग कार्ड भी जो मिला ना, बस यही वाला ब्लेसिंग कार्ड था कि लास्ट ऑफ फास्ट ऑफ फर्स्ट जाना है, तो हम बहुत खुश हुए। तो नेक्स्ट डे हमको अमृत वेला करना था कुटिया में, तो अब कैसे, तो फिर हम आ गए ऊपर वो 8:30 की गाड़ी से, और यहाँ पे शशिकांत भाई को मिले, फिर उन्होंने हमको यहाँ कमरा दे दिया रहने के लिए, और हमने अमृत वेला किया मॉर्निंग में। और फिर मॉर्निंग में 11 के आसपास हम यहाँ शांति स्तंभ पे बैठे थे योग करते। उस टाइम का एक्सपीरियंस ऐसा था, हमको पता ही नहीं चला कि 1 घंटा हम कहाँ चले गए, और इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा कि हम जब उठे तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, किसी का फोन आया तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और फिर उस दिन हमने डिसाइड किया कि हम मधुबन वापस आएंगे, और अब मुझे यहीं वापस आना है और अब यहीं रहना है, मतलब मुंबई मुझे छोड़ना है अभी, लेकिन कैसे छोड़ना है वो तो नहीं मालूम, क्योंकि मम्मी तो बैठी तलवार लेके और ना घर में इतना विरोध, तो फिर अब क्या करना है। लेकिन मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मुझे पता था यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल है, और मुझे गरीबों की सेवा में ज़्यादा इंटरेस्ट था हमेशा से, तो फिर हम वापस गए। फिर दिन निकलते गए, फिर बहुत युक्ति से चलने लगे, अगर झगड़ा करते तो फिर वो लोग रेस्ट्रिक्शन डालते, ब्लेसिंग कार्ड जो मिलते थे वो सब हम अपने आईने पे लगाते थे। एक दिन तो मम्मी ने सारे निकाल के फेंके, हुई सुबह उठे तो देखे कहाँ गए सब, और देखा तो बाबा का लैंप भी कहीं छुपा दिया उसने, बुक्स भी सब फेंक दी, तो ऐसे मम्मी का सब कुछ चालू था। और फिर पवित्रता की परीक्षा आई, तो वो तो सोच रहे ना कि शादी करानी है अभी इसकी, अब तो ये बड़ी हो गई, ये तो खाना बनाने भी लग गई, तो उनको तो बड़ा अच्छा लग रहा था खाना बना रही है ये, लेकिन हमने तो उसके लिए भी ना कर दिया। तो फिर बहुत झगड़ने लगे, बहुत झगड़ने लगे, बहुत विरोध कि नहीं जाना है, बीएससीए से रिजाइन कर दो, अभी तुम वहाँ गई ना इसीलिए ये सब हुआ। फिर उन्होंने मुझे धमकी दी कि हम आके केस कर देंगे बीएससीए पर, हम तुम्हारे डॉक्टर अशोक मेहता पर भी केस कर देंगे आके। तो मैं तो रोने लगी, मुझे लगा अच्छा मतलब ये लोग ऐसे कर दिए तो कभी, लेकिन मुझे नहीं मालूम हमारा यज्ञ इतना बड़ा है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, तो करेगा भी तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि भगवान का यज्ञ। इतनी समझ नहीं थी तभी, तभी तो डर लग रहा था क्योंकि मम्मी ऐसे वार्निंग्स दे रही थी मुझे और बहुत फोर्स हो रहा था, लेकिन फैमिली की तरफ से भी फोर्स होता था, लेकिन मैं हमेशा अपनी मम्मी को ही सामने रखती थी कि यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको ही जवाब देना है, बाकी सबको अगर मैं जवाब देते बैठी तो पूरी कम्युनिटी आएगी मेरे से झगड़ने। तो फिर और हमेशा और आदि देव बुक पढ़ती थी और जो दादियों के जो अनुभव है वो पढ़ती थी, तो मुझे बहुत शक्ति आती थी कि हाँ दादियों के साथ भी ऐसा हुआ। तो हर ब्राह्मण को पवित्रता की परीक्षा देनी है और पास होना है, हर ब्राह्मण पास होता है तो मुझे भी पास होना है, ये अपना लक्ष्य रखती थी। और बाबा मुरली में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बोलते थे कि तुम बकरी थोड़ी ना हो, तुम तो शेर हो, तो ऐसे पॉइंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हाँ मैं भी शेर हूँ, तो ऐसे सब कुछ होने लगा। फिर लेकिन पिताजी से एक बंधन था ना कि उनको छोड़ के तो मैं यहाँ नहीं आ सकती थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने 2 साल के बाद शरीर छोड़ा, हमने उनको घर पे ही रखा 2 साल, और एक नर्स रखा था, 12 घंटा वो नर्स देखता था सुबह 8 से रात के 8 बजे तक, फिर रात से 8 से मॉर्निंग 8 बजे तक हम देखते थे। हम डॉक्टर होके भी हमने हर कुछ किया, हमने यूरिन स्टूल सब कुछ साफ किया, स्वीपर का काम किया अपने पिताजी के लिए, एक ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर कुछ मॉनिटर सब कुछ था हमारे यहाँ पे, घर के अंदर हम ये सब ला के रखे थे, और 2 साल हम उनके पीछे रहे। लेकिन अब हम उनसे बहुत डिटैच हो गए थे क्योंकि अब हमको समझ थी, अब हम नेक्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस में आए तो हमारे साथ और भी लोगों को लेके आए। तो जब हम वापस गए ना, हमने डिसाइड कर लिया था, हमने तो उनका भोग भी लगा दिया था 1 महीने पहले उनके शरीर छोड़ने से पहले, और फिर मैंने बोला कि बहुत हो गया अभी, कि अब ये आत्मा जानी चाहिए क्योंकि बहुत तकलीफ हो रही है इनको, ये इतना तकलीफ हो रहा है, अब ये आत्मा शरीर छोड़ देगी तो ही अच्छा है, ये हमने संकल्प किया था। और 1 महीने के बाद ऐसे हुआ, और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो हमारी आँख से आंसू ही नहीं आए, नहीं तो जो इंसान हमारे लिए सब कुछ था अगर वो जाए तो क्या नहीं हो जाए। लेकिन अब हम इतने स्ट्रांग बन गए, बाबा ने मुरलियों के द्वारा इतना स्ट्रांग बना दिया कि जब वो गए तो कुछ नहीं हुआ, तो जब उनकी बॉडी भी रखी हुई थी तो हम उनको शांति का दान दे रहे थे, लोग हमको देख रहे थे हमारे घर में आके, क्योंकि बाकी दिनों पे उन्होंने हमको देखा नहीं था ऐसे। और फिर एक एक बहन ने तो हमको हिला के कहा कि रो बाबा रो, रोना चाहिए, तो हमने उनको भी ज्ञान सुनाना चालू किया वहाँ पे, ये तो आत्मा है, ये गई है तो उसको रोना नहीं चाहिए, उसको तकलीफ होगी, ये सब हम उनको सुनाने लगे कि ऐसा है। तो फिर दिन निकलते गए, अब हमको आना था मधुबन क्योंकि अब तो बंधन टूटा। तो फिर हमने बीएससीए से रिजाइन कर दिया और घर बैठे थे, तो घर बैठे बैठे तो मम्मी और मेरे सिर पे। तो फिर उसके बाद हमको यहाँ से कॉल आया था कि यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो फिर हमने हमारी मम्मी को कहा कि हमको मधुबन जाना है ग्लोबल हॉस्पिटल में, वहाँ पे डॉक्टर की ज़रूरत है और वो हमको बुला रहे हैं। तो मम्मी ने बोला बिल्कुल नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि आपको हम भेज देंगे, आप तो गई तो फिर गई। मैंने कहा नहीं, सिर्फ 6 महीने के लिए ही जाना है, वो लोग सिर्फ 6 महीने के लिए मुझे बुला रहे हैं, उसके बाद तो मैं वापस आ जाऊंगी। तो फिर मम्मी ने कहा कि अगर भाई बोलेगा तो जाने का, नहीं तो नहीं, भाई जबकि मेरे से 1 साल छोटा है, फिर भी मम्मी ने उसको बीच में रखा। फिर कैसे वैसे भी करके बाबा की वंडर की परमिशन मुझे मिल गई कि जा सकते आप। और फिर जैसे ही उन्होंने बोला ना, मैंने तुरंत टिकट करवाने के लिए भागी मैं, लेकिन टिकट ही नहीं मिल रही मुझे। और हमारे जो अनिल भाई है मुंबई से, वो हमारी टिकट का करते, वो मुझे बोल रहे बहन जी मेरे लिए भी टिकट नहीं, मैं आपको कहाँ से टिकट दूँ, मतलब मई सीजन था तभी। तो फिर हमको एक जयपुर स्पेशल मिल गई जिसमें हम बैठ के मधुबन आए 14 घंटा, और मम्मी ने हमारे मामा जो है ना, हमारे मामा जी जो आते हैं, उनको साथ में भेजा कि ये साथ में जाएंगे आपके, अगर सब कुछ ठीक लगेगा तो आप रहेंगे, नहीं तो आप वापस आएंगे इनके साथ। हमने भी कहा ठीक है। मामा को तो हमने यहाँ लाके गोल गोल घुमाया ही जैसे ही वो आए उनका कोर्स करवाया और मधुबन में कुछ भाइयों से मिला है, जीतू भाई और रवि भाई उनसे मिले। तो वो जो मामा जी है ना वो बैचलर है, उन्होंने शादी नहीं की है, तो ये लोग उनको और चढ़ाने लगे, अरे वाह आप बैचलर हो और दुनिया में रहते हो। तो वो भी खुश कि अरे वाह मतलब मुझे इतना इन लोग इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं यहाँ पर। तो और उनका कोर्स भी करा दिया तो उनको समझ में आया। फिर वो मेरे साइड से ही बोलते गए कि हाँ बेटा वो मम्मी लोग को समझ में नहीं आएगी ये बात। मैंने बोला आपको समझ में आ गया ना, वही बस है आपको जाके यही बोलना है उधर। फिर हमारा हो गया यहाँ पे 6 महीना हो गया, 6 महीने तक मेरी मम्मी रुकी कि ये 6 महीने के बाद वापस आएंगी, लेकिन हम वापस अभी तक नहीं गए। तो फिर 6 महीने के बाद फोन आने लगे कि अभी वापस आना है, 6 महीना हो गया। तो मैंने कहा नहीं अभी तो इतना अच्छा है। तो फिर बहन ने मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, बड़ी बहन जो है ना वो एडवोकेट है तो बहुत प्यार लाके हो, तो उसने मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मंगवाया बड़ी युक्ति से और उसने देखा इस पे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो उन लोग 2 साल रुके, लेकिन उस दौरान बहुत सारी वार्निंग्स वापस चालू हुई कि तुमको वापस आना है, तुम ऐसे करती हो, सब सुनना पड़ता है, ऐसे बहुत ब्लैकमेलिंग चालू थी उनकी। तो फिर भी हम वापस तो गए नहीं, उनको गोल गोल ही घुमाते गए और उनको यहाँ पर बुलाया। तो फिर उसके बाद उनको बोला आप लोग भी आओ यहाँ पर देखो। जब वो लोग यहाँ पर आए तो पहली टाइम जब मेरी मम्मी आई थी ना तो उसने बोला यहाँ सब भाई लोग हैं, उसको सब भाई दिख रहे थे ज़्यादा यहाँ पर, तो उसको थोड़ा ठीक नहीं लगा फर्स्ट टाइम। फिर उनका कोर्स कराना भी चालू किया हमने, तो कोर्स जब करवाया तो जिन्होंने कोर्स करवाया ना फैमिली आई थी, नानी आई थी, आंटी आई थी, मम्मी आई थी, बहन, उन सबको बिठा के मैंने सोचा कोर्स करवाते ना इतना अच्छा चांस है। तो कोर्स कराने बिठाया तो उन्होंने प्रॉफिट के बारे में कुछ बोल दिया तो वो सारे भड़क गए और उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे ये कोर्स, ये कुछ भी बोलते हैं ये लोग। फिर मैंने बोला कुछ नहीं आप लोग कोर्स मत करो, छोड़ देते। और फिर हमने सूरज भाई की क्लास में सुना था कि जो आत्मा आर्ट गैलरी से भी पास होती है ना वो देवकुल की आत्मा है। तो मैंने सोचा चलो बाबा इनको अभी आर्ट गैलरी लेके जाते, इनका भाग्य शायद इतना ही है। तो फिर हम इनको आर्ट गैलरी, फिर हमने उनको घुमाना ही चालू किया, फिर आर्ट गैलरी लेके गए, सब कुछ हो गया, फिर वो वापस गए, उनको सब कुछ अच्छा लगा। फिर वो फिर भी उनका चालू कि आना है वापस। फिर एक दिन मेरे भाई ने फ़ोन किया मुझे और कहा कि है ना हम हमारे पिताजी को खो चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ को भी मैं खो दूँ क्योंकि वो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है, या तो तुम मर जाओगी या तो वो मर जाएगी, और तुम मर जाओगी ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम मर जाओ। तो मैंने बोला अच्छा मेरा भाई है, तो मैंने सिस्टर हमारे यहाँ पे, मैंने बोला देखो ना मेरा भाई ऐसे बोल रहा है कि तुम मर जाओगी तो अच्छा है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, बंधन टूट रहे, बाबा ने कहा कि मित्र संबंधियों को सबको भूलो तो ये सब भूलते ही जाना है इनको। तो फिर वो हो गया, तो फिर उसके बाद हम गए नहीं और यहाँ पर ही है अभी 5.5 साल से हम अभी यहाँ पर ही है। तो अभी भी मम्मी आती है और कुछ कुछ परीक्षाएं होती है तो उसको फेस करते। अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते।
घर जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती
है? घर जाते हैं तो भोजन हम ही बनाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, या तो मम्मी बनाती है। अभी तो भाई की जो वाइफ है वो भी है लेकिन हम उसके हाथ का नहीं खाते, उसको पहले से ही बोला है। प्योरिटी की बात उनको समझ में ही नहीं आती एक्चुअली। मुस्लिम में ना प्योरिटी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, उनके लिए पवित्रता ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उनके लिए शादी करना ये सब फर्ज है, सुन्नत है, तो वो है ना इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो ऐसे होता है, लेकिन मुझे हर चीज़ में युक्ति से चलना पड़ता है। जैसे मैं सेवा पे भी जाती थी ना मुंबई में प्रदर्शनी में, तो मम्मी को बोलती थी कि आज मेरी ड्यूटी ना 4 घंटा ज़्यादा है, और फिर मैं वहाँ रह के ड्यू करती थी या तो हॉस्पिटल वालों से छुट्टी लेती थी, क्योंकि हॉस्पिटल में भी जो हमारी इंचार्ज थी ना वो मुस्लिम थी तो वो मुझ पर और नज़र रखती थी, एक वो नज़र रखती थी और घर पे वो, तो वो हाँ और वो नज़र ही रखती थी। तो मैं उसको बोलती थी आज मुझे छुट्टी चाहिए, घर पे कुछ काम है, और मम्मी को कहती थी कि आज एक्स्ट्रा ड्यूटी है 12 घंटे का, और प्रदर्शनी में जाती थी। ऐसे झूठ झूठ बोल के सेवा करनी पड़ती थी, वरना तो वो लोग मुझे कुछ करने ही नहीं देते। यहाँ पर भी जब वो लोग आते हैं ना तो बाबा के चित्र होते हैं ना रूम में, तो मैं कहती हूँ नहीं ये हॉस्पिटल वालों ने ही लगाए हैं चित्र, ये उनका रूम है तो वो लोग नहीं लगाएंगे। और जितनी भी मुरली होती है वो सब मुझे स्टोर रूम में रखनी पड़ती थी, बिल्कुल उनके सामने नहीं रखना, अव्यक्त वाणी जितनी भी है, अव्यक्त वाणी वो सब मैंने यहीं आके इतनी गहराई में समझा। जब हम मुंबई में थे तो इतना नहीं था, बट यहाँ पे मेरे पास इतनी बुक्स है अभी कि वो सब बैग में मुझे भर के छुपानी पड़ती है। लेकिन अब थोड़ा मैं शेर बन रही हूँ तो अब मैं नहीं छुपाती हूँ। अब जब लास्ट टाइम वो आए थे तो नहीं छुपाए, लेकिन जब पहली टाइम आए थे तो अब वो लोग 2-3 बार आ चुके हैं यहाँ पे, अब घूमते हैं, अब उनको अच्छा लगता है। बीच बीच में ऐसा होता है कि बोलते हैं कि नहीं तुमको आना पड़ेगा वापस, लेकिन हम उनकी बात ही नहीं सुनते अभी, तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो तो बुला ही लेंगे वापस।
और पुरस्कार क्या चलता
है? 2 साल पहले जब हम आए थे यहाँ पे अनुभव सुनाया था, तभी भी आपने प्रश्न पूछा था,
तब तो अभी
वो वाला हो गया अभी। हाँ पहले जब आए थे तो मधुबन में सबको देखते थे, मधुबन में ना सबको देख के ही पुरुषार्थ बढ़ता है। जब हम आए तो देखा सबकी दिनचर्या कितनी फिक्स रहती है यहाँ पर, सब सुबह में 3 बजे 2 बजे उठ के स्नान करके योग करने आते हैं सब। जब कितने भाई बहन ऐसे हैं जिनकी योग करने की जगह भी फिक्स है यहाँ पर, एक पवित्रता की निशानी है ये भी। तो हम ये सारी चीज़ें देख देख के ही सीखते हैं लोगों से, हम ज़्यादा पूछते नहीं हैं किसी को, लेकिन हम उनसे देखते हैं कि वो क्या करते हैं और उनको देख देख के सीखते हैं। तो मधुबन निवासियों से तो हमने बहुत कुछ सीखा कि दिनचर्या कैसी, रूटीन को रेगुलर और पंक्चुअल बनानी है और कैसे पुरुषार्थ करना है, वो सब कुछ यहाँ पे आके सीखा। लोग हमको कहते हैं कि आप तो मधुबन चले गए, हम जब सेंटर पे थे ना तो हमारे साथ और भी 2-3 कुमारियाँ थी जिनको भी मधुबन आना था कि मधुबन में आके रहना था, लेकिन पहुँचे सिर्फ हम। तो फिर उनको ऐसा लगता है अरे तुम मधुबन पहुँच गई, तो मधुबन की लाज रखनी पड़ती है, तो पुरुषार्थ भी अच्छा ही करना पड़ता है। तो
करना पड़ता है
ऑटोमेटिकली होता है पुरुषार्थ यहाँ पे इतना कुछ मेहनत नहीं है, इतनी ज्यादा मेहनत नहीं जितनी भाई बहन जो बाहर रहते, क्योंकि हम जब यहाँ से 4 दिन भी अगर मुंबई जाते हैं तो हमको पता चलता है कि स्थिति कैसे ऊपर नीचे होती है। लेकिन अब पहले से ही वाइब्रेशन देते हैं उनको, सकाश देते हैं फैमिली को और फिर जाते हैं तो हो जाता है। तो विशेष पुरुषार्थ पहले तो हम संस्कारों पर काम करते थे कि बहुत संस्कारों की टक्कर होती थी यहाँ पर आने के बाद, तो ऐसा लगता था ऐसे क्यों होता है, मतलब लोग हमारे साथ ऐसे क्यों करते हैं। पहले मैं आई थी ना यहाँ तो रोज़ रोती थी, रोज फिर हफ्ते में एक बार वहाँ, फिर अभी ऐसा होता है कि अभी रोना नहीं आता, अब सीख गए कि कैसे संस्कार अभी संस्कारों की रास करने आ गई, पहले नहीं आती थी, पहले ऐसा लगता था ये क्यों है, लेकिन अब समझ में आया कि हमारे हिसाब किताब इन्हीं ब्राह्मणों के साथ है, इसीलिए हम मधुबन पहुंचे हैं, नहीं तो हम मधुबन नहीं पहुंचते, हम मुंबई में ही रहते और हमारे हिसाब किताब वहाँ चुप तोड़ते, लेकिन हमारे हिसाब किताब इन इतनी अच्छी ब्राह्मण आत्माओं से है, महान आत्माओं से, जो कितने भाई बहन यहाँ 40 साल 30 साल 25 साल से रहते हैं और हम तो बहुत छोटे हैं उनके सामने, और फिर भी हमारी टक्कर ऐसी क्यों हो जाती है उनसे। लेकिन अब समझ में आता है कि नहीं, ये संस्कारों की रास है, ये ड्रामा है, ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, तो ये सब समझ के हमने उस चीज़ को तो काफ़ी हद तक जीत लिया। अब हम पुरुषार्थ करते हैं कर्मयोग पर, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग बहुत सेट हो जाते हैं हमेशा, मॉर्निंग में अमृत वेला करते हैं, क्लास करते हैं, चिंतन क्लास करते और फिर जाते हैं, 9 से 5 का जो टाइम है ना, अब हमारा ध्यान उस पे है कि उसको कितना अच्छा करें, क्योंकि 9 से 5 के बीच में ही सब कुछ होता है, 9 से 5 के बीच में ही परिस्थितियाँ आती है, टक्कर होती है, पेशेंट आते हैं, इमरजेंसी आती है, उस टाइम पे योग में कैसे रहना है, उस टाइम पे बाबा की याद कैसी रहनी चाहिए, तो ये हम करने की कोशिश करते हैं कि ये हम कैसे करें, क्योंकि कितना आराम से 7-8 घंटा है उसमें, तो ऐसे ही नहीं चला जाना चाहिए ना इतनी साधारणता में, वो तो उस पर हमारा विशेष ध्यान रहता है। हम अपनी सिर को पूरा ज्ञान में डुबा के रखते कि ज्ञान में रहे, लेकिन योग में और क्या करे ये सोचते और ये करने की कोशिश करते। फिर कुरान तो पढ़ी है, कुरान की ट्रांसलेशन हमने नहीं पढ़ी थी, यही था ना कि धर्म में हमको कुछ ऐसे वो नहीं था, कुरान भी पढ़े, नमाज भी पढ़ रहे, यही तो अट्रैक्शन था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर संबंध था ना बाप का और बच्चे का, और वहां पर था कि रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन बिना समझ के, जानमाज पे खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे तो भी आपकी बुद्धि यहाँ वहां भटक रही है। और यहाँ पर संबंध था, प्यार था, जबकि मुस्लिम में अल्लाह को अल्लाह ही देखते हैं, उसके साथ कोई रिश्ते नहीं जोड़ने, वो बाप नहीं है हमारा। ये जो चीज है ना, ये कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी क्योंकि मेरे लिए रिप्लेसमेंट था बाबा मेरे पिताजी की जगह पे, मुझे रिप्लेसमेंट मिल गया, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये रिलेशनशिप। लेकिन मेरी फैमिली ने भी अभी ये पूरा ज्ञान एक्सेप्ट किया, लेकिन वो यही चीज नहीं एक्सेप्ट करते कि है ना ये तुम्हारा पिता है। जैसे अभी मेरे भाई बहन सब आए थे तो मैं उनको सब जगह घुमा रही थी, तो म्यूजियम गए, आर्ट गैलरी गए, यहाँ पर आए, सब जगह एक ही ज्ञान सुन रहे थे, आत्मा परमात्मा ये सब। तो पीस पार्क में जब पहुंचे ना तो मैंने कहा चलो चलो अंदर जाएंगे, तो मेरा भाई बोलते है वही बोलेंगे ना, तो वही तो जगह सब जगह जो सुन रहे वही सुनना पड़ेगा। फिर उसने हमको कहा कि सब कुछ राइट है आपका, जो आप बोल रहे हो ना सब कुछ राइट है, लेकिन वो हमारा बाप है ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। रूह तो स्वीकार करते है ना, रूह है ना, नहीं उसके मतलब ना ही उसका कोई पिता है ना ही उसका कोई औलाद है, ऐसा बिलीव है मुस्लिम्स में, ना ही उसका कोई पिता है ना ही उसका कोई औलाद है, ना ही उसकी कोई माँ है ना ही उसका कोई बाप है, तो ये रिलेशनशिप है ही नहीं, वो खुदा है। इसीलिए तो ना उसको ऊपर रखा है और नीचे, बाबा यहाँ क्या कर रहा है, बाबा हमारे सामने आके खड़ा है और हमसे रिश्ता जोड़ रहा है। वहां पर ऐसा है कि हम तुम्हारे बंदे है, बंदे मतलब दास है, और वो मालिक है, ये फिलोसफी है मुस्लिम में, वो मालिक है और हम बंदे हैं, तो वो जो बोलेगा वो करेंगे।
बात तो उनकी भी ठीक है, रूह तो पहले बड़ा करता
हूँ पुनर्जन्म भी नहीं है, लेकिन यही चीज हमको ज्ञान में टच की, कार्मिक फिलोसफी, पास्ट लाइफ। हाँ हाँ, कयामत का समय तो हर रिलीजन में कयामत का समय है, वो तो सब बात की गई। पवित्रता को वो जानते ही नहीं, पवित्रता को वो मानते ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैंने कहा ना कि मुस्लिम में शादी करना फर्ज है, सुन्नत है, विकार उनके लिए सुन्नत है जो कि हमारे लिए नहीं है। और पवित्रता, जैसे मैं उनको बोलती हूँ ना कि मैं आपके हाथ का भोजन नहीं खा सकती, तो उनको ये समझ में ही नहीं आता जब मैं समझाती हूँ कि हमारी प्योरिटी की बात है ये, लेकिन वो ये समझते नहीं, उनको लगता है कि बाहर का नहीं खाती, तो वो मुझे कहते घर का खाओ सब कुछ तो ये बात
नमाज
अभी पढ़ते ही नहीं, अभी योग करते पहले पढ़ते थे। हाँ पहले तो नमाज पढ़ते थे, 5 टाइम नमाज रहती थी, जितने टाइम घर पे रहते थे उतना पढ़ते थे, फिर आके उसको कजा होती है तो कजा पढ़ते थे, लेकिन अब नहीं पढ़ते। अब जब अभी मम्मी जब यहाँ पर भेज रही थी ना तो साथ में जा नमाज भेजा उसने, पंसुरा कुरान सब कुछ दिया मुझे लेके आने के लिए, लेकिन मैंने सब कुछ अंदर रखा है, और जब वो आती है ना तब मैं सब ऊपर ऊपर रखती हूँ, देखा कि ये सब मैं करती हूँ अभी भी। एक दिन वो आई, मेरा ऑपरेशन था तो इमरजेंसी में आए, तो मुझे तैयारी करने नहीं मिली, सब छुपाने नहीं मिला, और वो पंसुरा रह गया अंदर, तो वो सफाई करने लगी, वो बोली अरे पंसुरा अंदर, तो मैंने बोला अब क्या बोलने का मुझे मतलब आप पढ़ते ही नहीं, तो ऐसे होता है। कोई दूसरे जो सेम धर्म के लोग आ जाते हैं ना सामने तो थोड़ा चौंक जाते हैं हमको यहाँ देख के, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत साल से ज्ञान में, 10-15 साल 20 साल से ज्ञान में देख के। एक बार एक पेशेंट आए थे, वो मुस्लिम थे, वो मौलाना थे कहीं के, उन्होंने तो हमसे बहुत झगड़ा किया ग्लोबल हॉस्पिटल में, उसको लगा कि मैं तो अभी नर्क में जाने वाली जोजफ में, तो उसने क्या किया, वो इतना झगड़ा, बुरे हीना साहिबा हम आपको सलाम अलैकुम तो बोल सकते हैं ना, तो मैंने बोला हाँ जी, और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको बुक्स भेज के दूंगा, हाँ, और फिर वो सच में उन्होंने मुझे बुक्स भेज के दी कि है ना मौत के बाद क्या होगा, ऐसी बुक भेज के दी, और है ना जन्नत क्या है और इस्लाम क्या है, ऐसी 2-3 बुक्स उन्होंने कुरियर करके दी हमको, वो भी मुंबई जोगेश्वरी से ही थे जहाँ से हम हैं, तो ऐसे विरोध करते हैं लोग, लेकिन हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है, जो बिल्डिंग में हम रहते हैं लेकिन हम इतने कांटेक्ट में नहीं आते क्योंकि हम फ्लैट में रहते हैं ना, तो इतने कांटेक्ट में नहीं आते। और हमारी फैमिली भी हमको बहुत बोलने की कोशिश नहीं करती इतना। जैसे भाई की अब शादी थी तो अब मुझे उसकी शादी में जाना था, तो वो भी एक परीक्षा थी। लेकिन बाबा से बहुत योग करके बहुत स्ट्रांग बन के गए थे यहाँ से, तो एक दिन भी अमृत वेला मिस भी नहीं किया। 2 बजे सोते थे तो 4 बजे उठ के अमृत वेला करते थे, मुरली पढ़ लेते। उनके जागने से पहले मुझे सब कुछ करना पड़ता है घर में, वो उनके उठने से पहले मुरली पढ़ लो, योग कर लो, जो करना है कर लो, फिर वो उठेंगे तो करने नहीं देंगे और ध्यान रखेंगे कि क्या कर रहे हैं। तो भाई की शादी में भी गए तो भोजन पे बहुत परीक्षा थी कि वो खाना क्या, अभी खाने का क्या उनके यहाँ पे ना, वो सामने वाली लड़की के घर पे गए तो इतना अच्छा कि वो भाई ने बोल के रखा था ये बाहर का नहीं खाती, तो वो मुझे जूस देते थे, फ्रूट्स काट के देते थे। और मेरी फैमिली के जो मेरे चाचा और वो सब थे ना, वो टोकते थे, अरे तुम खाओ, अरे तुम खाओ। तो मैं उनको कहती थी देखो सामने वाले इतने अच्छे हैं और आप ही हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं, तो अभी समझते हैं। और कपड़े भी हमारे लिए खरीदेंगे ना अभी कोई भी फैमिली में, तो वाइट ही खरीदते वो भी मम्मी ने ऑब्जर्व किया था जब वो यहाँ पे आई, तो उन्होंने देखा कोई कोई कलर कपड़े पहने हैं, तो उसने मुझे कहा यहाँ तो कलर कपड़े पहनते हो, तुमने बोला तुम्हारा यूनिफॉर्म ही वाइट है, तो मैंने बोला हाँ मेरा यूनिफॉर्म वाइट ही है, तो इनको पहनना है तो इनको पहनने दो। लेकिन वो बाहर वाले देखो हमको कितना ऑब्जर्व करते, क्योंकि मैंने तो अपनी मम्मी को बोल दिया ना कि हमारा तो यूनिफॉर्म वाइट है और हम वाइट ही पहनेंगे, और जब वही आई तो उसने देखा थोड़े लोग वो भी एक था। उस टाइम पे ना हमको पहले से ऐसे सिखाया जाता था कि आप ऐसे देखो कि आप खुदा के सामने खड़े हो, और नियत जो बांधना होता है ना वो अलग अलग, जैसे कि अगर कोई शबे बरात हो, शबे कदर हो, तो सबकी नियत लिखी हुई है कि कैसे बांधनी है वो नियत, और उस हिसाब से करके फिर नमाज पढ़नी है। ऐसा बिलीव करते हैं कि आप, हाँ, लेकिन वो ज्ञान इतना है ही नहीं। नहीं नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना खुदा नूरे इलाही है, लेकिन ऐसा भी नहीं सिखाया जाता कि नमाज जब पढ़ रहे हो तब नूरे इलाही को देखो या ध्यान में रखो। मतलब हमारा जैसे योग है ना, जब हम योग करते तो बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट देखते हैं, लेकिन नमाज में ऐसा नहीं है कि आप उसको नूरे इलाही के रूप में देखो, ये भी नहीं है। कोमा नहीं है उसमें बहुत सारी दुआएं और आयतें हैं तो पढ़ते हैं।
अभी आप जो नमाज पढ़ते हो, अरकात चार धाम की यात्रा करते हो, उसमें क्या क्या सोचते हो, कैसे करते हो?
उसमें तो अलग अलग ड्रिल्स करते हैं। कभी है ना, अगर एक एक धाम पे अगर आधा घंटा बैठ गए तो पूरा योग करके उठते हैं, और अगर सपोज जैसे 5-5 मिनट खड़े रहे तो फिर कभी 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं। एक जगह पे जाके बाबा से दृष्टि लेके वरदान लेते हैं, एक जगह पे जाके रू रिहान करते कि आज हम ये करने वाले हैं, और एक जगह पे जाके बाई करते हैं उसको तो ऐसे चार धाम की यात्रा करते हैं। लेकिन अभी हम नमाज नहीं पढ़ते, कई लोग आके, कोई जो बीके अभी अभी मुस्लिम्स बने वो भी हमको आके कभी पूछते हैं ना, तो हम उनको साफ कह देते कि हम नहीं पढ़ते, मुझे झूठ बोलने बहुत होता है, नहीं तो मतलब झूठ बोलेंगे ना तो फिर उसको छुपाने के लिए और 100 झूठ बोलने पड़ते, इसलिए युक्ति से तो चलना है, लेकिन पता नहीं मुझे इच्छा ही नहीं होती कि ऐसे बोलूं कि हाँ मैं पढ़ती हूँ और मैं ऐसे पढ़ती हूँ, नहीं, अभी तो मुझे याद भी नहीं। जब पहले पहले यहाँ पर आई थी और मुंबई जा रही थी तो मुझे निकाल के थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ा इंटरनेट पे, क्योंकि मैं सब कुछ भूलते जा रही थी, और वहाँ जाके अगर किसी ने मुझे पूछ लिया तो इसीलिए। नहीं, पिता तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, जैसे कि पिता तो नहीं, अभी भी जो बहने सेंटर पे बाहर रहते हैं आप उनको पूछिए, जब वो लोग बाबा का लेते हैं ना चैप्टर, तब वो लोग ये बोलते ही नहीं कि ये है ना आपका फादर है, वो आपका सुनेंगे ही नहीं आगे।
उल्टा वो लोग हमारे पास सेंटर पर भी आते थे, जब हम VIP लंच वगैरह
प्राणेश्वर बाबा है, प्राण दान देने, तो मुरली के पॉइंट
मुझे बताएंगे तो
आप लोग बताएंगे मुरली के पॉइंट. बाबा ने आज कहा है कि सुनो मुरली, थक जाओ तो सो जाओ. बीमार हो तो भी मुरली सुनना है, तो भी कोई हर्जा नहीं. प्राणेश्वर बाबा आया है प्राणदान देने के लिए, और वो बॉम्ब वॉम्ब बनाते हैं विनाश के लिए. वो भी कहा ना बाबा ने कि है ना, ये कोई नई बात नहीं है. और अगर उनका सिर फिर जाए तो वो प्रेसिडेंट को भी मार सकते हैं, वो भी कहा बाबा ने. और
झोपड़ी में पत्र लिखा था उसका क्या हुआ?
तो मिल गया ना जवाब कि कार्मिक फिलोसफी के हिसाब से ये सब होता है और उसी की वजह से हुआ. यही उत्तर मिला और उसी पर वही मेरे लिए था ज्ञान का कैचिंग पॉइंट. अदरवाइज मुझे और कुछ तो मिला ही नहीं. मुझे आत्मा परमात्मा ये मतलब ये शब्द ही मुझे हिंदू जैसे लगते थे. परमात्मा आत्मा ये शब्द हिंदू. अभी भी वो लोगों के सामने अगर आप ऐसे यूज करेंगे तो उनको नहीं टच होता है. आप उनको रूह बोलेंगे, आप उनको सोल, या तो फॉरेन कंट्रीज में आप सोल बोलेंगे तब उनको अच्छा लगेगा. आप उनके सामने परमात्मा और भगवान बोल दो और स्वर्ग बोल दो तो भी नहीं अच्छा लगेगा. आपको जन्नत बोलना पड़ेगा, जोजग बोलना पड़ेगा, बहिष्ट बोलना पड़ेगा. कम करते थे, भूख लगती थी हमको. हम रोजा हाँ सुबह 4 बजे सैरी करो और इफ्तारी शाम को. हाँ टूटता था लेकिन हमने इतना किया नहीं. और है ना इस्लाम में बहुत डराया जाता है कि अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो आप तो हेल में ही जाएंगे, मतलब नरक में ही जाएंगे. ये सब चीजें बहुत डर है. इस्लाम डरा कर आपको सब कुछ कराता है और बाबा प्यार से आपको सब कुछ कराता है. ये डिफरेंस है. बहुत सारे लॉज है, बहुत ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, आपको ये दंड मिलेगा, आपको नर्क में ऐसा जाना पड़ेगा, आपको ऐसे होगा. तो ये सारी चीजें डराने वाली थी उधर. और है ना मतलब वहां पर इंसान गॉड फियरिंग बन जाता है, यहाँ पर इंसान गॉड लविंग बन जाता है. तो यहाँ बाबा सब कुछ प्यार से कराते हैं. देखो मुरली भी जब चालू करता है तो हमको कितने स्वमान में लेके आता है. पहले इतने स्वमान में लेके आएगा, प्यार से बात करेगा, फिर होमवर्क देगा एक छोटा सा. तो ये बात उधर नहीं है. उधर तो बचपन से ही आपको कुरान और अरबी पढ़नी है और मस्जिद में जाना है, ये सब पहले से ही स्ट्रिक्ट होता है. 7 साल की उम्र से ही रोजा और नमाज फर्ज हो जाते हैं. अब 7 साल का बच्चा है उसके पीछे इतना सब कुछ लगा देते हैं कि आपको 30 रोजे भी रखने हैं, आपको 5 टाइम की नमाज भी पढ़नी है, आपको कुरान भी पढ़ना है ऐसे. लेकिन जो ब्रॉड माइंडेड फैमिली होती है ना, जैसे हम तो मुंबई में रहते थे तो हमारे पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे. ये हमारे लिए अच्छा था, नहीं तो हम भी कट्टर मुस्लिम होते. ठीक है, ओम शांति.
कीजिए, मन को रोशन कीजिए, जीन से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी।
इसको भेजना नहीं है ना।